संतप्तमान शांत हूँ, इनके गुणों के गान में देवर जमान महान इतने हुए। पेज नंबर 200 नंबर पेज पे निकालो। इस प्रकार इस कलश में विगत कलश की बात को पुष्ट करते हुए मात्र यही कहा गया है कि शुभाशुभ भाव कसाय भाव के भार से बोझिल आलसीपने का भाव ही प्रमाद है, और इस प्रमाद की अवस्था में शुद्धोपयोग रूप अप्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण नहीं हो सकता, तथा शुद्धोपयोग रूप अप्रतिक्रमण के धारी मुनिराज ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये एक तरीके से पूरे प्रकरण का ही उपसंहार है। अब यह तो आप क्या हो गया ना, कहा है? नहीं पता। यह तो आपको ज्ञात ही है कि मोक्षाधिकार समाप्त हो गया है। मोक्षाधिकार की चर्चा यहां पूरी हो गई। मोक्षाधिकार के अंत में निश्चय व्यवहार प्रतिक्रमणादि और अप्रतिक्रमणादि संबंधी जो गाथाएं आई थीं, उन गाथाओं की विषय वस्तु के आधार पर 188 से 190 तक के तीन कलश कहे। ये तीन कलश उन गाथाओं के आधार पर किए जहां के प्रतिक्रमण की गाथाएं शुरू हुई थी, जिनमें उक्त प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण की ही चर्चा है। अब मोक्षाधिकार की समाप्ति पर दो कलश कहते हैं। अब ये दो कलश आएंगे पूरे मोक्षाधिकार की समाप्ति पर हैं, जिसमें पहला कलश में मोक्ष का होने का अनुक्रम बताते हैं और दूसरे कलश में धीर वीर ज्ञान ज्योति का स्मरण करते हुए अंत मंगल करते हैं। अब पहला कलश में क्या बताते हैं कि मोक्ष होने का अनुक्रम। कहने का मतलब यह है मोक्ष की बात नहीं है, मोक्ष होता है तो कैसे कैसे होता है, किस किस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति हमें होती है, उसमें कौन सा क्रम कहां से लागू होता है, उसकी चर्चा इन्होंने इस कलश में की है। पढ़ो भाई इस कलश को। अरे अशुद्धता करने वाले परद्रव्यों को, यद्यपि कोई परद्रव्य अशुद्धता नहीं करता है, माने जिन परद्रव्यों के आश्रय से अशुद्धता माने शुभाशुभ भाव पैदा होते हैं, उसको इस भाषा में कहा कि अशुद्धता करने वाले वो भाव हैं। ऊपर भी यही भाषा है, अशुद्ध विधायी परद्रव्यम समग्रम स्वयं त्यक्त्वा, है ना, कि परद्रव्य को करने वाली भाषा ऐसी है और उसका इस भाषा से ऐसा समझ लें कि प्रतिभु ने हमें संसार किया था कि विकार कराया था कि शुभाशुभ भाव कराए थे, ऐसा कुछ नहीं है। पर द्रव्यों के आश्रय से जो शुभाशुभ भाव होते हैं उन सब पर द्रव्यों में से अपनी दृष्टि हटाकर स्वद्रव्यम स्वद्रव्ये रति मेति अपने आत्मा में रति करते हैं। बेजी माने आप समझ लो मुक्ति का क्रम की बात बता रहे, मुक्ति की नहीं बता रहे, तो कहां से शुरू कर रहे कि इन पर जिन परद्रव्यों के आश्रय से जो शुभाशुभ भाव होते हैं उन सब का त्याग करके, देखो एक एक झटके में सबको त्याग करके और अपने आत्मा में जो रति लाते हैं, यहां से ही शुरू की मन मोक्ष मार्ग की शुरुआत यहां से होती है। ये बात समझ लो, क्या कह रहे हैं? अब हम तो पीछे 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 कहां से मालूम कहां से जाते हैं, हैं? तो कौआ के मांस छोड़ने तक जाएंगे, क्योंकि टोडा मंजी ने लिखा है ना, जो जो जिसकी पात्रता हो तो कौए का मांस छोड़ाएंगे। वो तो कहते हैं हमारा तो यहां से शुरू होगा, इसके पहले का जो है वो मोक्ष का मार्ग ही नहीं है, मोक्ष के मार्ग का क्रम यहां से ही आरंभ होता है। ये अमृतचंद्राचार्य का कलश है, है? कितना मार्ग में आप इस बिंदु को वैसे ही छोड़ जाओ, ठीक है भैया यहां से कह दिया, उन्होंने उसे हमने कह दिया कि नहीं सबसे पहले तो स्वाध्याय करना पड़ेगा, फिर ये समझना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा, फिर ये सब छोड़ना पड़ेगा, फिर अभी तो अनुवृत महावृत लेना पड़ेंगे, है ना? ये सब सबको जो बाद के थे उनको भी उस पहले में ही डालते हैं। तो रमन जी ने भी लिखा किन्हीं किन्हीं को पहले होते हैं और किन्हीं किन्हीं को बाद में हो जाते हैं। तो वे जो लिखा है वो जो पहले होते हैं जिनके वे सच्चे थे वे होना चाहिए। अब तो लोक में क्या होता है, किसी ने वो दीक्षा पहले ले ली और वो महाव्रत वहां पर धारण कर लिए, अब क्या करें उनको? अब उनको भी दुसंबर्शन की बात समझाओ। इसलिए वो कहते हैं किन्हीं को पीछे होता है किन्हीं को पहले होता है, लेकिन अब इतना आधा काम तो निपट ही गया, अब समर्थन होते ही सब सच्चे हो जाएंगे। अरे वे सच्चे नहीं होंगे, उनका नाश होगा और जो नए होंगे वे सच्चे होंगे। कर लो पहले भी काम, तो बाद में भी करने चाहे पहले करने, अपन से वो नहीं बनता है तो ये काम पहले निपटा लो, ऐसा कर देना। ये ऐसी बात है कि नियम है ना बोर्ड का कि मैट्रिक पास नहीं हो, मैट्रिक में दसवीं क्लास पास नहीं हो तो फिर वो ग्यारहवीं क्लास में नहीं पढ़ सकता, किसी भी कॉलेज में कहीं भी भर्ती नहीं हो सकता। वो ग्यारहवीं पास नहीं होगा तो बारहवीं में नहीं हो सकता, बारहवीं पास नहीं होगा तो तेरहवीं में नहीं हो सकता, है ना? तेरहवीं नहीं होगा तो चौदहवीं में नहीं हो सकता, ऐसा क्रम है क्या? नहीं है। अब वो कहता है कि ये जो गोदान उपन्यास है ना बहुत अच्छा है प्रेमचंद जी का, अभी सोलहवीं क्लास में है, इसे अपन पहले ही पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ना पड़ेगा, मैट्रिक बाद में करते रहेंगे। तो पढ़ लेना, तुझे कौन रोकता है पढ़ लेगा, लेकिन वो तेरा गोदान पढ़ना यहां किसी काम नहीं आएगा। और जैसा एमए में गोदान पढ़ा जाएगा वैसा तुम अभी पढ़ भी नहीं सकता, कि उसकी कथा वस्तु क्या है, उसका कथोपकथन कैसे है, उसका कथा का प्रवाह क्या है, उद्देश्य क्या है, उपन्यास के जो तत्व हैं उन तत्वों पर पूरी तरह वो घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं है। हमने ये कहानी लिख दी तो हम कहानीकार हो गए? ये ग्वालियर ही कहानियां कहते हैं और सुनाते हैं, और कभी कभी तुमसे अच्छे तरीके से रोचक तरीके से सुनाते हैं, लेकिन ये कहानीकार नहीं हो जाते हैं। मुझे कहानी के तत्वों पर वो कहानी खड़ी उतरनी चाहिए। ये सब माताएं मैंने अपने बच्चों को कहानियां सुनाती हैं तो कहानी साहित्य में उनको स्थान क्यों नहीं मिल जाता। और उसने कहा था एक कहानी लिखी और आज सर्वश्रेष्ठ कहानी आज तक जिसके पहले जितनी कहानियां लिखी थी उनमें सर्वश्रेष्ठ और उसके बाद आज तक वैसी कोई कहानी नहीं लिख सका। आज तक भी वो सर्वश्रेष्ठ का गद्दी पर बैठी है उसे कोई उतार नहीं सका। क्या है उस कहानी में? हम तो तीन दफे पढ़ी अभी समझते ही नहीं आज दी क्या है इसमें। ये पहले पढ़ लिया था कि इतनी बड़ी कहानी ऐसी महान कहानी है। उसने कहा था किसने लिखी है? कहाँ कहाँ हुआ था पैदा वो? कहाँ था कहाँ था? क्या कह रहे बड़े दादा? वो जयपुर में पैदा हुआ था। सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर देखत में छोटे हैं घाव करें दीर। ये सतसैया किसने लिखी थी? कवि बिहारी ने। कहाँ पैदा हुआ था वो?
जयपुर में।
मोक्ष मार्ग लिखा था किसने लिखा था? ये कहाँ पैदा हुए थे? समय सार की टीका सबसे पहले किसने लिखी थी और कहाँ पैदा हुआ था? कीर्ति भाई, अरे कहीं कोई जयपुर में पैदा नहीं हुआ हो और महान काम करना है तो पहले जयपुर में जाना पड़ेगा उसे। समझे ना? तो ये देखो, अरे अशुद्धता करने वाले परद्रव्यों को अरे दूर से त्याग, दूर से त्याग। मतलब कि भाई आज आजान दो पास में, पहले होन दो फिर त्यागेंगे। अरे तो भय ही नहीं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बातें ही मत करो। अरे दूर से त्याग स्वयं में लीन रहे जो, संस्कृत में स्वद्रव्यम रतिम मेति, अपने द्रव्य में रति करते हैं। श्रद्धा ज्ञान चाह तो तीनों को मिलाकर के उसके यहां पर रति का अर्थ है। और अपराधों से दूर बंध का नाश करें भी, वे अपराध से दूर हो गए क्योंकि परम एकत्वमत बुद्धि थी वो अपराध था। अपराध और दोष में अंतर समझते हो? फौजदारी और दीवानी केस में अंतर समझते हो? फौजदारी केस उन्हें कहते हैं अदालत में जिनमें समझौता नहीं होता, और दीवानी केस उन्हें कहते हैं कि जिनमें समझौता के लिए जज तुम्हें समझाता है कि जाओ चुपचाप बेटा बाहर बैठ के समझौता कर लो, नहीं तो फिर हम जो करेंगे उसमें किसी को कोई फायदा नहीं होगा। जज समझाता है समझौता करने के लिए। अब क्या हमने फौजदारी केस में समझौता कर लिया साहब? कहते नहीं है, वो तो पुलिस केस है। पुलिस केस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एक पार्टी है, गवर्नमेंट किसी से समझौता नहीं करती। तुमने किसी की हत्या कर दी, अब समझौता किससे कर लिया? उसके बेटे से, उसकी पत्नी से। तुमने अपराध बेटे के प्रति किया है कि उसके बाप के प्रति? जिसे समझौता करना था वो तो मर ही गया, अब तो तुम्हें सजा ही होगी। जिसमें अनिवार्य सजा हो उसे अपराध कहते हैं, समझे ना? और जिसमें ऐसे ही चलता है, समझौता भी हो जाता है, प्रतिक्रमण हो जाता है, समझौता माने प्रतिक्रमण लौट के आ जाते हैं, उन्हें दोष कहते हैं। अपराधों का प्रतिक्रमण नहीं होता क्या राकेश भाई? दोष प्रतिक्रमण जो होता है वो दोषों का होता है। अपराध माने मिथ्यात्व, और दोष माने चारित्र का दोष। दर्शन मोह का नाम है अपराध और चारित्र मोह का नाम है दोष। तो इसमें लिखा ना पहले कि अशुद्धता का तो ना उसको तो छोड़ो, उसके पहले तो बात नहीं हो सकती है कि शुभ भाव रंच मात्र मुक्ति का कारण है, ये है अपराध, समझे ना। और इतना शुभ भाव होना, कितना ही शुभ भाव होना उच्च कोटि का और निम्न से निम्न कोटि का, वो सब है दोष। समय सार अपराध के अभाव के लिए लिखा है, दोषों के अभाव के लिए नहीं। दोषों का अभाव करना है तो प्रवचन सार की चरणानुयोग सूचक तुलिका पढ़ो, नियम सार को पढ़ो और ग्रंथ है उनको पढ़ो, समझ ना। ये तो अपराध के निषेध के लिए है, इसलिए मोक्षाधिकार में अभी मोक्ष तक पहुंच गए होंगे तो वो तो पहले ही गुरुस्थान में से निकलते ही खत्म हो जाता है। अब तुम उसको लेकर के बैठे हो, अब मोक्ष में जाएगा वो तो 14वें गुरुस्थान के बाद जाएगा, अब उसकी तो बात नहीं करते हो। अभी तुम इसको पहले ही गुरुस्थान से निकले, हम कहते हमने तो इसी के लिए लिखा है समय सार, और इसलिए तो हम कहते हैं कि 14वें गुरुस्थान में भी मुक्ति होती है। असली मुक्ति तो 14वें गुणस्थान में होती है, वो मोह का नाश था, दरअसल मोह का नाश तो वहां हुआ ना, उससे छुट्टी तो वहां मिली, बाकी की चीज तो किस्तों में निपट जाएगी, एक भव में नहीं तो 9 भव में निपट जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। आप जानते हैं ना कि 9 भव आते हैं ना हर एक में, फलाने के 9 भव, इसके भी 9 भव, उसके 9 भव, कोई भी पंच कल्याण है वो सबके 9 भव, 10 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, 7 भव क्यों नहीं। राजू रोती है तो 9 भव की मेरी प्रीति लगी है, 11 की क्यों नहीं, सोचा कभी। नहीं, 9 का अंक अफर होता है, तो प्रीति को अफर रखनी है, कभी फिरे ही नहीं। देखो सुमन दर्शन होने के बाद में भी 9 भव हो सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं। अब आपको कह रहे हम तो 3-4 की सुनी थी, सुनी होगी, मैं बताता हूं आपको। सुमन दृष्टि मनुष्य गति में हो तो मर के गारंटी से देवगति में होगा, देवगति में हो तो मर के गारंटी से मनुष्य गति में होगा, अगर मनुष्य गति में हो तो मर के गारंटी से, अरे 9 भव ऐसे ही होते हैं, देख लो गिन लो, क्या क्यों अब ज्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो 8-8 भव का जो हिसाब किताब है वो तो बुद्ध नहीं बनता है। मनुष्य देव, देव से मनुष्य, जन से देव, देव से मनुष्य, मनुष्य कदम नरक जा नहीं सकता, वो ट्रेन छोड़ नहीं सकता, मनुष्य मर के देव, मर के देव हो नहीं सकता। पर मनुष्य भी सम्य दृष्टि हो छायक तो मनुष्य नहीं हो सकता मर के, क्या क्या किसको विकल्प आ रहा है, देव ही होगा गारंटी से, क्योंकि उसमें देव आयु का ही बंध होता है और मनुष्य आयु का बंध होता ही नहीं है। ये जो वो जाते हैं ना वहां विदेश क्षेत्र में 127 जीव, ये सब मिथ्या दृष्टि होते हैं, भद्र मिथ्या दृष्टि, जो उसी भव से वहां से मोक्ष चले जाते हैं, विदेश क्षेत्र में जाते हैं यहां से और उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं, वे सब भद्र मिथ्या दृष्टि होते हैं। अब भद्र तो इसलिए लगा दिया क्योंकि अभी अगले ही भव में मोक्ष जाने वाले हैं, समझे ना, वे होते हैं, पर वो नक्की है, ऐसा नहीं कि हमारा नंबर लग जाएगा, कुछ लोग कहने लगे हम तो मिथ्या दृष्टि अच्छे, हमें नहीं बनने से मिथ्या दृष्टि, विदेश से तो नहीं जा पाएंगे, स्वर्ग जाना पड़ेगा, हजारों वर्ष को लटक जाएंगे, इसलिए मिल जाएंगे फटाफट दीक्षा लेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। शॉर्ट रास्ता उन्हें ये दिखता है क्यों, अरे तेरे को मिथ्या दर्शन में उपाधि बुद्धि हो गई, अब तेरे को क्या ठिकाना है संसार का, क्या करना तेरे मोक्ष में जाकर के, तेरे रिश्तेदार बैठे हुआ, तू हो गया है ना मुक्त, मोह से मुक्त हो गया चौथे गुण स्थान में, अब क्या रह गया बाकी, अब होता रहेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि 10-50 वर्ष पहले गया कि 10-50 वर्ष बाद में, है? कोई आदमी ये कहे कि तुम 10 साल में एमए हो गए, अभी कौन सी क्लास में हो ना, 6वीं में, तो 16वीं पास हो गए तो 10 साल लगेंगे, क्यों क्या, नहीं 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 मतलब बोलना चाहिए, अभी मैं 10 साल में मर गया तो ठीक है, क्यों 2 साल में हो सकता है लेकिन 2 साल बाद मर जाएगा, ठीक है चाहिए, ये मेरा रिजल्ट आते ही खत्म नहीं चाहिए, तो नहीं काय को इसमें होना, क्या फर्क पड़ना है, फिर जब होना होगा हो जाएगा क्या, जो पुरुष यही चल रहा है ना, हाँ पंडित जयचंद जी छाबड़ा का पढ़ रहा हूं मैं नीचे देखू, जो पुरुष पहले समस्त परद्रव्य का त्याग करके निज द्रव्य में लीन होता है, वह पुरुष समस्त रागादिक अपराधों से रहित होकर आगामी कर्मबंध का नाश करता है, आगामी कर्मबंध का नाश करता कैसे करेगा, जो भविष्य में हमें कर्म बंधने वाला है उसका नाश कैसे होगा, हमारे कर्म बंध नहीं करता है, और नित्य उदय रूप केवल ज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध होकर समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करता है, यह मोक्ष होने का अनुक्रम है, पर यहां से शुरू हुआ यहीं खत्म होगा, सम्मा दर्शन से शुरू हुआ और समझने ज्ञान चारित्र की पूर्णता पर खत्म हुआ, सम्मा दर्शन तो चौथे गुण स्थान में पूर्ण हो सकता है, वास्तव में सम्मा दर्शन अधूरा होता ही नहीं, जब होता है वो पूर्ण ही होता है, चाहे क्षयोपशम हो चाहे उपशम हो, वो तो फिर द्वारा मिथ्यात्व में नहीं आएगा, इसकी अपेक्षा अपने सहायक को महान कहते हैं, क्योंकि या तो सम्मा दर्शन होता है या मिथ्या दर्शन होता है, तो पूरा ही होगा ना, और ज्ञान भी सम्यक पूर्ण ही होता है, पूरा नहीं सम्यक, उसका सम्यक बना पूर्ण ही होता है, और अभी चारित्र सम्मादर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ एक समय में पैदा होते हैं, इनकी उत्पत्ति का तीनों का एक समय है, वो चौथे गुण स्थान है, वो अभी सम्मादर्शन छाया समर्थन चौथे में हो गया, इसलिए वो पूर्ण भी चौथे में ही हो गया, और ज्ञान गुण पूर्ण केवल सम्य ज्ञानी, अब ज्ञान कह रहा हूं मैं, सम्य ज्ञान की बात पहले निपटा दी, वो सम्य ज्ञानत्व की अपेक्षा पूर्ण हो गया, लेकिन वो पूर्णता की अपेक्षा 13वें गुण स्थान में होता है, स्टार्ट होता है चौथे में और पूर्णता की अपेक्षा 13वें गुण स्थान में, और चारित्र पहले गुण स्थान में पैदा होता है और पूर्णता की अपेक्षा समझ लो मोक्ष में ही, क्या क्या वो तो कह दे, प्रारंभ तीनों एक साथ होते हैं और पूर्ण वहां भी वो क्या कहते हैं ना, कौन सा चारा तब वो रह जाता है अब वो नहीं होता है, तो अभी ऐसा इनका क्रम है पूर्णता का, इसलिए मेरा एक वाक्य है कि श्रद्धा में किस्त नहीं होती और चारित्र में किस्त होती ही है, ऐसा नहीं होता कि किसी को नहीं हो किस्तों में और बनी किस्त के चुका दे, ऐसा नहीं होता, वो उसको नबी गांव में बताएंगे कर्णानी योग वाले, इतने अंतर मुहूर्त तो लगते ही लगते हैं, एक ने किया ना इतने से इसमें ये होगा फिर इतने से इतने होगा फिर इतने होगा, इतने अंतर मुहूर्त तो लगते ही हैं, भले ही उन सारे अंतर मुहूर्तों को जोड़ दो तो ही अंतर मुहूर्त ही तो श्रद्धा में किस्त नहीं होती, सम्यक ज्ञान में किस्त नहीं होती, चारित्र में किस्त होती ही है। अब सुनो कैसे, एक अदालत में किसी के विरुद्ध केस गया, बहुत गरीब आदमी था, पहनने के लिए लंगोटी थी, फटे फटा कपड़े थे, नंगे बदन अदालत में पेश हुआ। तो सामने वाले वकील ने और मजिस्ट्रेट ने पूछा उससे कि तुमने इन सेठ जी से 10,000 रुपये उधार लिए थे? तो वो जवाब देता है कि साहब मैं नहीं दे सकता, मेरे घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, मैं कहां से दूंगा। कि देख भाई, तू दे सकता है कि नहीं दे सकता इसका फैसला नहीं होना है, मेरी अदालत में केस इस बात का नहीं आया है। क्या मेरी अदालत में एक केस आया है कि तूने पैसा लिए थे कि नहीं, वो ये जो तूने लिख के दिया ना रजिस्टर पे स्टाम्प पे, ये तेरे हस्ताक्षर हैं कि नहीं, तुझे मुझे इतना जानना है और इस पर फैसला हो जाएगा। कि साहब मैं कैसे कह रहा हूं ना, भूखों मर जाऊंगा, 6 बच्चे हैं, 300 रुपये महीना की नौकरी है, मैं कैसे दूंगा साहब। कि भई तुम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा ये बात कहां है, सिर्फ ये बोल के लिए थे कि नहीं, फैसला तो इसके आधार पर होगा। कि साहब मैं 25 रुपये महीना किस्त दे दूंगा। तू कितने रुपए महीने की किस्त देगा और कितने की नहीं देगा, अभी उसकी बात नहीं हो रही है, अभी तो तू एक बात बता के लिए थे कि नहीं, बस खत्म। ऐसे ही श्रद्धा गुण ये कहता है कि परद्रव्यों का तू करता है कि नहीं, ये परद्रव्य तेरे हैं कि नहीं, तू इनका स्वामी है कि नहीं, ये बता दो। क्यों कैसा, मैं नहीं छोड़ सकता है, इनके बिना मेरा काम नहीं चलता। तू छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है, जब बाद में देखेंगे, तू पहले ये बता कि ये तेरे हैं कि नहीं। श्रद्धा में किस्त नहीं होती का मतलब समझे ना, वहां तो एक साथ ही बात होगी कि मेरे हैं कि मेरे नहीं है, कि मैंने रुपए लिए थे कि मैंने नहीं लिए थे, पर एक दो टूक ही जवाब देना पड़ेगा, यहां कोई रास्ता नहीं है, ये समझे ना, मोक्ष तक की बात यही स्वीकार करनी पड़ेगी। और फिर अब श्रद्धा में किस्त नहीं होती, फिर चारित्र में हो जाती है, माने क्या कि तू इस भव में पहली प्रतिमा ले, दूसरी ले, नहीं ले, चले अमृत समय दृष्टि में बना रहे हैं तो भी चलेगा, नरक में चला जाए हैं तो भी वहां कोई वृद्ध संयम नहीं पलेगा तो भी चलेगा। अब समझ रहे ना, आपके वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वीकृति तेरे को नहीं है, एक सेकंड भी नहीं हो जाएगी। अब वो कहता है कि साहब मैं 25 रुपये महीना दे दूंगा, कि मैं मूर्ख हूं क्या, तुझे 300 रुपये महीना मिलता है, 6 बाल बच्चे हैं, वो इतनी महंगाई का जमाना, तू 25 रुपये दे सकता है, नहीं दे सकता। साहब तो मेरे पक्ष में बोलने लगी, अनप्रैक्टिकल तू बात कहेगा तो मैं कैसे मानूंगा, जब किस्त बंधेगी तो कितनी बांधनी के कितनी नहीं बांधनी ये मैं अलग से तय करूंगा, वो इस आधार पर नहीं होगी कि तूने लिए थे कि नहीं लिए थे, फिर तो तेरी हैसियत के आधार पर होगी। क्या कैसेर जी, कोई किस्त नहीं बांधी जा सकती, ये पैसा इसने लिए थे स्वीकार करता है, ये डिग्री है, है? अब तुम्हारे हाथ में कुर्की कराना है तो करा लो, इसका कुर्ता जो उतरवा लो, तुम पहनना कल से, है? इसके पास है क्या, एक पैसे की किस्त नहीं बंधेगी, तो फिर कल तुम केस लेके आओगे कि ये नहीं चुका रहा मेरे, वो चुकाएगा कहां से, क्यों कितनी मिलेगी? कहने साहब फिर से सजा तो मिलनी चाहिए कि हाँ हो सकती है, चलो कितनी चाहिए, 6 महीने की सजा दे देता हूं इसको मैं, लेकिन ये जेल में रहेगा ना तो जेल का किराया और खाने पीने का खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा। अब तुम सुना है अपने में ऐसा होता था पहले, यदि आपको जेल करवानी है तो गवर्नमेंट क्यों करे, कमाई तुम करो और खर्चा गवर्नमेंट करे। समझ में आई ना? पर ऐसे लोग होते थे कसाई की तीव्रता वाले, ये समझ लेंगे हाँ डाल दो मैं खर्चा दूंगा, मैं चक्की पिसवा के रहूंगा इससे, है ना? क्या आप सुन रहे ना? तो वो चारित्र में इस भव में कुछ भी नहीं छोड़े तो चल सकता है, और धीरे धीरे छोड़े तो भी चल सकता है, और अंतर मुहूर्त में ही सारा छोड़ दे तो भी चल सकता है। कितने बैरियर हैं, लेकिन जितने की डिग्री हुई है उतने पैसे तेरे को चुकाने पड़ेंगे, तूने लिए थे इतनी की डिग्री हुई है इतने पैसे तेरे को चुकाने पड़ेंगे। तो जितना तूने परद्रव्यों को ग्रहण किया है एकत्र माना और तूने स्वीकार किया है और डिग्री बनी है, ये सब त्यागने योग्य हैं, इन्हें तू एक भव में छोड़, 3 भव में छोड़, 7-8 भव में छोड़, तो छोड़ना पड़ेंगे सब। अब ये वो चारित्र वाला मामला है, ये छोड़ना जिसे बोलते हैं, श्रद्धा में तो तत्काल छोड़ने पड़ेंगे, उसे भी छोड़ना बोलते हैं, इसलिए वो मुक्त कहते हैं ना, तदगुण स्थान में मुक्ति हो जाती, माने श्रद्धा में छोड़ना इसका नाम है श्रद्धा की मुक्ति। अब चारित्र में तो धीरे धीरे छूटेंगे, तत्काल नहीं छूट सकते हैं। गुनासी दास ने उदाहरण दिया ना कि दूसरे का चदरा ओढ़ के सो गए हैं, तो तत्काल नहीं छोड़ सकता। उसने शब्द पढ़ा संस्कृत में अमृतचंद का, वो नग्नी क्रियमाणा, उसने ऐसा खींच के नग्न कर दिया, ऐसा लिखा। पर संस्कृत जानते हो तो देखो कितनी जोरदार भाषा है। वो आया, अरे भैया मुझे परेशान मत करो, मेरी सुनो, चदरा खींच के कहता नग्न करता हुआ, नंगा कर देगा नंगा, अरे नंगा कर देगा उसमें क्या है ना, अपने तो नंगा देंगे मैं मुनिराज होते हैं ना, वो लोग सोचे क्यों? भाई साहब जरा माफ करना, मैं इज्जत खराब मत करो, मैं दे दूंगा शाम को लाके आपको धुलवा करके दे दूंगा, आप क्यों इसको ले जाते हो? तो वो कहेगा ठीक है दे दे, चलेगा। आप सुनिए ना, उस वक्त बिल्कुल नहीं दे तो भी चलेगा, आप सुनिए ना तब तत्काल। लेकिन ऐसे ही कहते हैं कि श्रद्धा में किस्त होती है, चारित्र में किस्त होती है, श्रद्धा में किस्त नहीं होती। और ये समय सार श्रद्धा का ग्रंथ है, श्रद्धा की प्रधानता वाला ग्रंथ है, इसलिए इसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कहते हैं। होगा अभी भी बनारसी दास जी को भी पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ो। हाँ अरे तुलसीदास जी जैसा पढ़ो ना, रूपा कर्म बंदा ही है? इस तरह उन्होंने आठों कर्म को जलाया तो मोक्ष में पहुंच गए। यहां जो शुरू किया था ना कि जे समचिति जीव समचेती, सम्मान दर्शन से शुरू किया और मोक्ष तक पहुंचा दिया, तो यहां तो बड़ा पूरा क्रम लिया है और वहां तो वहीं से शुरू कर दिया था। कहां से? कि पहले सबको छोड़ो, फिर अपने में आओ और मोक्ष में चले जाओ। कलश में दर्शन किया था, लेकिन बनारसी दास ने वो चौथे पुनस्थान से लेकर और मोक्ष तक जाने तक की पूरी क्रिया की कहानी उन्होंने इसमें बता दी, पूरी रामायण सुना दी। बनारसी दास और तुलसीदास जी एक समय के थे, समकालीन थे और एक दूसरे की कवित्व से बहुत प्रभावित थे और आगरा के आसपास के थे। और आप जानते हैं ना उस समय पुरानी राजधानी कहाँ थी? आगरा और फिर दिल्ली, फिर आगरा और उसके पहले हाँ सीकरी, सीकरी से नहीं ना संतन कहा सीकरी सो काम हो, ये घोषणा करी थी वहां तुलसी कबीर ने कि संतों को सीकरी से क्या लेना देना। अब आपको लगता है सीकरी क्या है? रोटी होती है कि दाल होती है? सीकरी क्या? खिचड़ी होती है? क्या होती है? क्यों संतों को सीकरी से क्या लेना देना, इसका क्या अर्थ है? कि जहां राजधानी है तो वो जो कवि होते थे ना राज दरबार के, वे सब जाके राज दरबार में जाते थे, अपनी कविताएं सुनाते थे, लाखों रुपए का इनाम पाते थे। और ये संत कवि हैं, आप समझे उस जमाने में सब धर्मों में संत हुए थे, है ना? हिंदू धर्म में जैसे कबीर हुए, बलाने हुए, फलाने हुए, और उस वक्त जैनियों में दिगंबरों में तारण स्वामी हुए, वे भी संत कवि कहलाते थे, और श्वेतांबरों में लोकाशाय हुए। उन सारे संत कवियों से एक एक पंथ की स्थापना हुई, कबीर पंथ, दादू पंथ, कितने कितने पंथ हैं क्या नहीं सुना तुमने? ऐसे ही तारण पंथ और थानकवासी पंथ, ये लोकाशाय में सब में सारे धर्मों में उस समय संत पैदा हुए। और वो सारे संत भोलाना नहीं जला मूर्ति पूजा विरोधी थे। ऐसा क्यों हुआ? एक साथ सब धर्मों में एक सी क्रांति हुई है? क्योंकि उस समय ये मुसलमान शासक आए थे और इन्होंने मूर्तियां तोड़ना शुरू की थी, और वो मूर्तियां तोड़ते हर, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे जैनियों की हो, चाहे किसी की भी हो, वो मूर्तियां तोड़ते थे। तो वो जो मूर्तियां तोड़ते थे तो कुछ लोग तो हमें सामना करो, तो सामना तो कोई उनका कर नहीं सकता था, अभी तो सम्राट थे, सेना उनके साथ थी, तो मारो भागो रो धो ये सब करो। तो उसमें कई तरह के संत हुए। एक संत तो वे हुए कि जिनने कह दिया कि नहीं सही मूर्ति, बिना मूर्ति के हमारा धर्म नहीं रहेगा क्या? क्या उनको कोई मूर्ति से विरोध नहीं था, पहले उन्हीं लोगों से थे, अब इन दुष्टों से कैसे निपटे, नई नई मूर्ति विराजमान करें फिर ये तोड़े। इसलिए हमने कह दिया हम तो बिना मूर्ति के ही धर्म चलाएंगे। इस तरह सारे जिन जिन धर्मों की मूर्तियां तोड़ी गई थी सब में वो हुए। अब दूसरे कौन से संत हुए? संत तुलसीदास जैसे, संत सूरदास जैसे कि वो भगवान को पलंग, हे भगवान आ जाना तुम, आ जाना तुम, अवतार लेके आ जा, आ जा, आ जा, बचा ले बचा ले बचा ले, भगवान को चलाने लगे। क्यों? उन्हें कोई दूसरा रास्ता दिखा नहीं, क्योंकि ऐसे राजा रहे नहीं कि जिनकी वीर गाथाएं भी सुनाए, क्योंकि वो तो सब मार डाले मुसलमानों ने, इनके दरबार में जाके वीरों की गाथाएं सुनाए वे बचे नहीं। अब जो राजा थे वो जब मार झाड़ में मचे हुए थे तो उन्हें एक भगवान याद आए इस वक्त, इसलिए तुलसीदास को ये कहना पड़ा, श्री कृष्ण के मंदिर में गए तो मूर्ति थी, मुरली बजा रहे थे आराम से मस्त, त्रिभंगी तीन भंग पड़े हुए थे, एक कमर से ऐसी ऐसे ऐसे लटके मूर्ति बजा रहे थे। तो मैं नहीं करूंगा नमस्कार, क्या करूंगा इनका मैं। तो उसने कहा कि हे श्री कृष्ण भगवान, हे त्रिभंगी लाल, आप बहुत अच्छे लगते हो, मैं क्या बात करूं आपकी। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुषवान लेऊ हार, कि तुलसीदास जी का मस्तक तो तब नवेगा जब तुम धनुषवान लेके आओगे। क्या समझे इसका अर्थ? नहीं वो अलग, अभी अभी वो दिनकर का है भैया, समझे ना। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुषवान लेऊ हार, तो कहे मैं तो राम का भगत हूं, ऐसा अर्थ करते हैं लोग, और जो राम का चिन्ह है धनुषवान और इनका चिन्ह है मुरली, तो समझेंगे ना कि अभी तुम मुरली मुरली बजाना छोड़ो, इन दुष्ट मुसलमानों से लड़ना है, धनुषवान उठाओ तो मैं तुम्हें नमस्कार करूंगा, नहीं तो जाओ यहां से। क्या उसका मतलब? ये है कि हमें अभी मुरली बजाने वाले भगवान नहीं चाहिए, हमें धनुष बाण लेकर के राक्षसों का दमन करने वाले भगवान चाहिए, समझे ना। उसका अर्थ अकेला इतना ही नहीं है कि मैं राम का पुजारी हूं, कृष्ण का पुजारी नहीं हूं। क्या तुम उठा लो धनुष बाण, हम तुम्हारी पूजा कर लेंगे, हमें तो धनुष बाण वाले को पूजना है। और इसी बात को रामधारी सिंह दिनकर हुए ना अपने राष्ट्रकवि, तो उन्होंने भी अपनी कौन सा काव्य है कुरुक्षेत्र कौन सा है, तो उस हिमाचल के प्रति एक कविता है उनकी। अरे वाह वाह गजब है। देखो सुनो क्या है वो कविता कि तू रोक न युधिष्ठिर को यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। धर्मात्मा है ना, मत लड़ो लड़ने में क्या फायदा है, जाओ तुम स्वर्ग में चले जाओ, इन्हें भेजो स्वर्ग, ये सारी जनता को बिगाड़ेंगे, मत लड़ो फिरते रहो। तू रोक न युधिष्ठिर को यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, मतलब मर जान दो, स्वर्गवास काय को बोलते हैं। तू रोक न युधिष्ठिर को यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, तू फेर हमें गांडीव गधा और लौटा दे अर्जुन भीम वीर। हमें तो गांडीव लौटा दे अर्जुन का, भीम की गदा लौटा दे और उनसे लड़ने वाले अर्जुन और भीम लौटा दे, कि जो इनसे लड़ लड़ा करके और हमारे देश की समाज की धर्म की रक्षा करें। क्या वो यही भावना कि हमको भी वो भगवान नहीं चाहिए, अभी हमें धर्म का उपदेश देने वाले धर्मराज युधिष्ठिर नहीं चाहिए। क्यों? बहुत से कवियों ने बहुत खड़िया खड़ी करी है, हिंदू धर्म के कवियों ने हिंदू धर्म के भगवानों की, और ये क्या है बोलो, सब हिंदू थे लिखने वाले। एक और हुआ है आगरा में, उसने लिखा भैया मुझे वो पाठशाला देखनी है, कहाँ कि जहां युधिष्ठिर पढ़ा करते थे, मुझे वो क्या मुझे वो पाठशाला देखनी है जहां युधिष्ठिर पढ़ा करते थे और सत्य और झूठ एक साथ बोलने की ट्रेनिंग लिया करते थे। ये सब धर्मराज युधिष्ठिर पर बहुत सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर, उन सब की मजाक उड़ाई ना, वो सब वो भी शर्मा था लिखने वाला ना, रामविलास शर्मा, उसने भी कम्युनिस्ट कवि था। ये क्या है, इसकी तुम प्रशंसा करते हो? कोई जैनी लिखता तो उसकी खटिया खड़ी हो जाती है, लेकिन उनने लिखी तो वो जो संत का संप्रदाय कहलाते हैं वो सब एक समय की पैदाइश है, और सभी धर्म में वो दूसरे संत कौन हुए थे, जो भगवान को याद करने वाले थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वीर गाथा गाने वाले तो रहे नहीं, क्योंकि वीर ही नहीं रहे, क्यों अब वे भक्ति करने लगे, भगवान आजा भगवान बचा ले बचा ले बचा ले, और कृष्ण का जान दो हमें मूर्ति की जरूरत नहीं, हम तो अपने धर्म से चला लेंगे। अब उसके बाद फिर और आया तो मुसलमान लोग अशांति से जम गए, हिंदू राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, अपनी लड़कियों की शादी उनके साथ कर दी, किसने की वो कहा का था ये धन में सुविधा थे कम में सुविधा है। अब देश में शांति छा गई थी, अब विरोध नहीं रहा था, अब कभी बेचारे बेकार हो गए, ना तो वीर गाथा सुना सकते थे, ना भगवान को पुकारने की जरूरत रही थी है? अब तो फिर मुगल सम्राट अपनी हिंदू रानी के लिए राजमहल में मंदिर बनवाने लग गए थे, तोड़ने नहीं लग गए थे, आप समझ रहे ना, तब महारानी का महल, इसका महारानी का मंदिर, महारानी के महल में महारानी मंदिर, मुसलमान में महारानी तो मुसलमान मंदिर, जो महारानी है उसका वैसा मंदिर बना दे, जैनियों को ये सौभाग्य नहीं मिला, नहीं तो किसी किले में एक आध जैन मंदिर भी बन जाता है। फिर अब कवियों के हाथ में क्या रह गया कि फिर श्रृंगार रस के गीत गाओ, समझे ना, और राजाओं को सुनाओ, मुसलमान राजाओं को, और उनसे लाखों के पुरस्कार पाओ, और आनंद से मौज मस्ती से रहो। उसे बोलते रीति काल, जहां श्रृंगार रस की प्रमुखता से कविताएं लिखी गई, रीति काल, रीति। वैसे रीति का अर्थ वो होता है कि कविता बनाने की रीति क्या है, उसमें अलंकार और छंद बनाने की रीति क्या है, और उसके जो ग्रंथ लिखे गए वो रीतिकालीन आचार्यों ने लिखे, और वे आचार्य श्रृंगार रस के सबसे ज्यादा कवि थे, और बनारसी दास उस जमाने में हुए तो उन्होंने भी एक नवरस की रचना बना दी थी, समझे ना। अब जो भी कह लेते थे ना, उनमें कुछ कुछ संत बाकी बचे थे, और सारे कवि तो राज दरबारों में पहुंच गए थे, तो उस वक्त के कवि ने कहा, क्या कहा, हाँ संतन कहा सीकरी सो काम है वो, अरे संत काहे को भगरे राजा के दरबारों में, तुम्हें तुम्हारा क्या काम है वहां, ये जो कवि है ना श्रृंगार रस के कवि, अब इनको उनकी उत्तेजनाएं की पूर्ति करने दो, अब तुम काहे को सीकरी की तरफ जाते हो, सीकरी माने देश की राजधानी, मैंने सीकरी उस वक्त देश की राजधानी थी, आया समझे आपके बाद में, बाद में दिल्ली बनी, फिर आगरा बनी, ये सब बदला बदली बहुत हुई, इतिहास की बातें हैं। खत्म हो गया अपना अधिकार, खत्म हो रहा है ना। चलो अभी एक पूरा पढ़ लेना, तुम अर्थ पढ़ लेना, नहीं तो बहुत मेरा दिमाग ना मालूम कहाँ कहाँ घूमेगा। ये है ना, जे समकृति जीव समचेती, अब तिनकी कहा कथा कहो तुम सेती। जो सम्यक दृष्टि जीव समता चित्त वाले हैं, उनकी कहानी मैं तुमसे कहता हूँ। तुम सेती माने तुमसे, जहाँ प्रमाद क्रिया नहीं कोई, निर्विकल्प अनुभव पद सोई। जहाँ प्रमाद नहीं है, प्रमत्त गुण स्थान नहीं है, वहाँ पर निर्विकल्प अनुभव होता है। परिग्रह त्याग जोग थिर तीनों, कर्म बंध नहीं होए नवीनों। परिग्रह का त्याग कर दो, योग में स्थिरता लाओ, माने तीनों माने ज्ञान दर्शन और चरित्र, इन तीनों में निर्मलता प्रकट करो, तो वहाँ पर नया कर्म बंध का नहीं होता है। जहाँ न राग द्वेष रस मोह, जहाँ मोह और राग द्वेष नहीं है, मोह माने मिथ्यात्व और राग द्वेष माने चरित्र मोह, वहाँ प्रगट मोक्ष मार्ग मुख सो है, वहाँ मोक्ष मार्ग प्रगट है। पूर्व बंध उदय नहीं व्यापे, और जहाँ न भेद पुण्य अरुपापे। अनुभव में पूर्व पहले जो हमने कर्म बांधा था, उसका उदय परेशान नहीं करता, व्याप्ता नहीं मैंने परेशान नहीं करता। वो जहाँ न भेद पुण्य अरुपापे, वो जहाँ पुण्य पाप का कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है माने सबको एक साथ नाश कर दिया गया है। दोनों किसी अपन कहते ना कि थोड़ा फर्क तो करो अच्छे बुरे का, कि कुछ नहीं। दरव भाव गुण निर्मल धारा, बोध निधान विधान विविध विस्तारा। कि द्रव्य भाव की अपेक्षा गुणों की निर्मलता की धारा, ज्ञान उसका विस्तार अनेक प्रकार का। जिनकी सहज अवस्था ऐसी, तिनके हृदय दुविधा कैसी। अब कहें कौन दुविधा जानते हो, दुविधा नहीं जानते। एक भजन आता है ना, दुविधा कब गई है या मन की दुविधा। बुद्धगा जी क्या करते थे भजन को बहुत जाना, दुविधा कब गई है या मन की, जब निज नाथ निरंजन निरखो तब गई है या मन की दुविधा, कब गई है या मन की। दुविधा जानते कि नहीं, दो विधा, जहां दो प्रश्न खड़े हो, कैसे तुम्हें शादी करना है कि नहीं, तो दुविधा खड़ी हो गई ना, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। अब नहीं करना है तो दुविधा खत्म, फैसला थोड़ी किससे नहीं करना है, ऐसा प्रश्न खड़ा तो नहीं होता। नहीं करना है दुविधा खत्म, फिर करना है तो जैनी लड़की से करना है क्या जैनी लड़की से, फिर दुविधा खड़ी हो गई। सुंदर से करना है कि बदसूरत से, पैसे वाली से करना है कि पढ़ी लिखी से, दुविधा खड़ी होगी। फिर दो विकल्प खड़े हो जाए, जहां जहां दो विकल्प खड़े होते जाए उसका नाम दुविधा, अंत नहीं है उसका। तो दुविधा कब गई है या मन की, कब जाएगी, कि जब निज नाथ निरंजन, अपना भगवान आत्मा जो कर्म मल से रहत है, उसको निरखो, पर उसको देखो, तो दुविधा चली जाएगी। फिर अपने को ध्यान आ के पर को ध्यान, अरे अपने को देख लिया तो पर का ध्यान कर रही क्या बात। जब निज नाथ निरंजन निरखो तब जई है या मन की दुविधा, कब जई है या मन की। अब कुछ लोगों को पसंद नहीं आया निजनाथ कौन होता है, इसलिए उन्होंने बदल के जिननाथ कर दिया। अरे तुम्हें अर्थ नहीं आता है तो अकल मत लगाओ ढेर, और तुम्हें कविता बनाने का बहुत शौक है तो अपनी बना लो। हाँ, यकीन दुविधा कैसी, तिन हृदय तिनके हृदय दुविधा कैसी। दुविधा कैसी माने कि अब मैं क्या करूं, पुण्य करूं कि धर्म, मैं शुभ भाव करूं कि शुद्ध। ये उनके हृदय में ऐसी दुविधा है ही नहीं, पक्का निर्णय हो गया। जिनके मन में कोई दुविधा नहीं है, ते मुनि छपक श्रेणी चढ़ी धाये, वे छपक श्रेणी में चल करके इतनी तेजी से दौड़े। कितनी तेजी से दौड़े, छपक श्रेणी की बात करन दो ना अभी पहले। अधा प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनवृत्तिकरण। अनवृत्तिकरण उसे बोलते हैं कि जो एक जीव पहले समय में दौड़ा तो पीछे वाला कितना ही ताकतवर हो तो उसका उसका साथ कभी पाएगा ही नहीं। पर नया 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 इतनी सबसे तेज दौड़ का नाम है। अभी समय खत्म हो गया, नहीं तो मैं जरा विस्तार से समझाता। अहरा प्रवृत्त कहन, अपूर्व कहन, अनुवृत्ति कहन, ते केवली भगवान कहाए, उनको केवली भगवान कहते हैं। यही विधि दे पूरण भये अष्टकर्म बन दाह, आठ कर्म के जंगल को जलाकर जो पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए, तिनकी महिमा जो लखे नमे बनारस ताही।